येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि हम ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिनी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कल हमने कंप्लीट किया था जहां पे सती देवी ने अपनी देह त्याग कर दी थी। श्रील प्रभुपाद वहां पे स्थापित करते हैं, जब सती देह त्याग करते हैं तो वहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो देह त्याग और सती ने जो नया नई देह प्राप्त की, इस देह को त्याग करने के बाद ये भौतिक देह थी, ये कोई आध्यात्मिक शरीर नहीं था, क्योंकि सती भगवान की बहिरंग आसक्ति है। तो और सती जो है वो भगवान शिव की नित्य स्वरूपिणी है, नित्य पत्नी के समान है। तो सती ने फिर देह त्याग करने के बाद हिमालय पर्वत के घर पे जन्म लिया पार्वती के रूप में, और फिर से पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो इस प्रकार से सती का नेक्स्ट लाइफ था, जिससे कि उन्होंने पार्वती का देह प्राप्त किया और फिर भगवान शिव को फिर से प्राप्त किया। पर जब सती को शरीर त्याग करते हुए देखा गया तो मणिमान और नंदीश्वर और जितने भी भगवान शिव के एसोसिएट थे वो सभी दक्ष की तरफ दौड़े, दक्ष को किल करने के लिए, मारने के लिए। और चारों तरफ से हाहाकार होने लगा। सभी लोग जोर जोर से, कुछ लोग दक्ष की बुराई कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि सती को शरीर त्याग करने की क्या आवश्यकता थी, शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो तो इतने बड़े पुरुष की पत्नी थी, भगवान शिव की पत्नी थी जो कि महादेव कहलाते हैं, तो उनको देह त्याग की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से कुछ लोग बता रहे थे। और इसी बीच जो भगवान शिव की जो आर्मी थी नंदी और मणिमान के साथ, उस आर्मी ने दक्ष को अटैक किया, दक्ष के ऊपर। और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यह भी बोला कि दक्ष जो है वो बहुत इनफेमस हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को ऑफेंड किया, उनकी पत्नी को ऑफेंड किया, इसलिए दक्ष जो है वो इनफेमस हो जाएंगे। इस तरह से लोग अलग अलग बात कर रहे थे। और भगवान शिव के जो भी पार्षद थे बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपनी जो देव अपनी मास्टर उनको में। तो जैसे ही सभी घोष्ट और राक्षस दक्ष की तरफ जाते हैं, उसी समय दक्ष के पक्ष में भृगु ब्राह्मण, भृगु एक बहुत फेमस ब्राह्मण है, बहुत फेमस ऋषि है, तो भृगु ने उसी समय एक बहुत शक्तिशाली देवताओं को उत्पन्न किया दक्ष की मदद करने के लिए। इन देवताओं का नाम था विभूस, विभू देव देवता। और उन्होंने किस प्रकार से यज्ञ की अग्नि में उन्होंने ऑफर किया, ऑब्लेशन डाला, और उससे यजुर्वेद के मंत्र जब बोले, तो इस प्रकार के देवता उससे उत्पन्न होते हैं, जो कि वैदिक यज्ञों को अगर कोई बिगाड़ने के लिए आता है तो ऐसे देवता आके उसका विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से देवता विभु नाम से देवता वहां पे आए। और इन सारे विभु देवता जो है इनके अंदर सोमदेव की शक्ति होती है, चंद्र मून गॉड की शक्ति पाई जाती है, और ये बहुत शक्तिशाली रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म तेज, ब्राह्मण का तेज जो है, उसके द्वारा जब इन देवताओं ने भगवान शिव के फॉलोअर्स पे अटैक किया तो शिव के फॉलोअर्स हर तरफ भागने लगे, उनको हरा दिया, डिफीट किया, मारा और उनको यज्ञ स्थली से भगा दिया। और इन ये सारी की सारी सूचना नारद के भगवान शिव को बताई कि आपकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, और भृगु ने इस प्रकार से देवताओं को, विभू देवताओं को बुलाया और उन्होंने आपके जितने पार्षद हैं उन सब पार्षदों को भगा दिया। तो भगवान शिव सती के जाते समय भगवान शिव ने सोचा था कि हो सकता है सती अगर जाएंगी तो हो सकता है फैमिली की ये लड़ाई खत्म हो जाए, परंतु उनको ये नहीं पता था कि दक्ष इतना ज्यादा दुष्ट होगा कि वो अपनी बेटी बेटी की मृत्यु से को कुछ असर नहीं होगा। इस प्रकार से उतने क्रोध के कारण उन्होंने अपने सिर से एक बाल निकाला, उस बाल को जमीन पे फेंका, उस बाल से एक ब्राह्मण का जन्म हुआ, उस बाल से एक राक्षस का जन्म हुआ। भगवान शिव एकदम पागल पुरुष के जैसे जोर जोर से हंस रहे थे गुस्सा के कारण, और उस राक्षस का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र राक्षस का डिस्क्रिप्शन भयानक थे कि उनकी ऊंचाई आकाश के समान थी और इतने ज्यादा चमक होती थी कि ऐसा लगता चमक थी। और वीरभद्र के पास 1,000 भुजाएं थी, बहुत तीखे दांत थे और बड़े 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 बाल थे, और गले में वो आदमियों के नरमुंड की माला पहने हुए थे। इस प्रकार से वीरभद्र भगवान शिव के सामने आते हैं और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है, और भगवान शिव ऑर्डर देते हैं कि जाके दक्ष को मार डालो और यज्ञ का विध्वंस कर दो। गुस्से में भगवान शिव इस प्रकार से आज्ञा करते हैं। बड़ी शक्ति है तो इसके सामने कोई शक्ति कार्य नहीं करता। तो वीरभद्र भगवान की परिक्रमा करने के बाद चले जाते हैं, और साथ साथ भगवान शिव के बहुत सारे पार्षद, भगवान शिव की सेना भी साथ में जाती है, और वीरभद्र के साथ शंकर जी के जैसा त्रिशूल भी रहता है। और वो ऐसा लगता था कि शायद वीरभद्र को देख के मृत्यु देवता खुद भी डर जाएंगे, वीरभद्र इतने खतरनाक लगते थे। इसी के बीच में दक्ष के यज्ञ में लोगों ने अलग अलग सिम्टम देखना चालू किए, आकाश अंधेरा होने लगा और साथ साथ अलग अलग सिम्टम आए, जैसे अशुभ अशुभ समाचार होते हैं, चारों तरफ तो धूल उड़ने लगी और कोई हवा हवा कभी बहुत तेज चलती थी एकाएक, कभी हवा बंद हो जाती थी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अशुभ सिम्टम क्यों आ रहे हैं। कोई ऐसा सोच रहा था कि हो सकता है संसार विनाश होने वाला हो, या हो सकता बहुत सारे चोर और ठग लोग आके हमें वो करने वाले हों, मारने वाले हों। और दक्ष की पत्नी को समझ में आ गया कि ये मेरे पति की मिस्टेक के कारण इस प्रकार से हो रहा है। तो प्रसूति ने बोला कि ये सिचुएशन एक्चुअली दक्ष ने जो इतना खराब व्यवहार किया उसके कारण हो रही है, और सती दक्ष के खराब व्यवहार के कारण सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ा, और हम सभी देखते रहे, हमारे देखते देखते हमारी बेटी ने देह त्याग कर दिया। इस प्रकार से सती की माँ बोल रही है। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने सुना है कि जब प्रलय होती है, प्रलय के समय भगवान शिव अट्टहास करते हैं और पागल व्यक्ति की तरह डांस करते हैं, और अपने त्रिशूल से वो अलग अलग जो लोक हैं, अलग अलग लोक के जो राजा हैं उन सभी का वध करते हैं भगवान शिव। तो इस प्रकार से जब बात चल रही थी, दक्ष ने भी देखना चालू किया, खतरनाक खतरनाक आकाश में से अलग अलग सिम्टम दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि भगवान शिव के फॉलोअर वीरभद्र के साथ यज्ञ की स्थली में आ रहे हैं, सारे काले कलर के और येलो कलर के हैं, और कुछ लोग जैसे वो लोग आए उन्होंने यज्ञ का जो मेन रास्ता था बाहर निकलने का, एग्जिट और एंट्री रास्ता था, उसको बंद कर दिया। तो जो ऋषि मुनि भाग रहे थे उन सबको वहीं पे ब्लॉक कर दिया, और बाकी लोगों ने देवताओं को अरेस्ट कर लिया जो भी देवता यज्ञ में आए हुए थे। मणिमान जो थे, मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, भृगु जिसने विभु नाम के देवताओं को भेजा था, भृगु को पकड़ा, और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। इसके अलावा चंडेश ने जो थे उन्होंने पूसा नाम के देवता को पकड़ा, नंदीश्वर ने भग को पकड़ा। तो पहले सभी ये ब्राह्मणों ने दक्ष का पक्ष लिया था, इसीलिए उन सबको सजा दी। वीरभद्र ने सबसे पहले भृगु महाराज, भृगु भृगु जो ऋषि थे भृगु ऋषि की मूछ खींच ली, मूछ खत्म कर दी, खींच के मुंह से मूछ निकाल दी। उसके बाद भग नाम से जो ऋषि थे, उस जब भगवान शंकर का अपमान, ऋषि उस समय भग नाम का जो देवता थे वो अपने आंखें घुमा रहे थे, तो उनकी आंखों को बाहर निकाल लिया वीरभद्र ने। और उसके बाद पूसा, पूसा जो थे, पूसा और दक्ष ये दोनों हंस रहे थे उस समय, हमारे और मुख से दांत निकल गए। और फिर दक्ष की छाती पे, परंतु दक्ष इतना शक्तिशाली, दक्ष को वहां पे एक एनिमल सेक्रीफाइस के लिए दिया और दक्ष को यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया, सिर पूरा जल गया उसी समय। पूरा जितने देवता थे सभी देख के एकदम दुखी हो गए, हमने कोई कुछ नहीं कर सकता है। और सारे के सारे देवता ने पूरे दक्ष के यज्ञ को खत्म कर दिया, और पूरी जगह पे आग भी लगा दिया, और सभी देवताओं को बहुत मार, हाथ टूट गया, कोई लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, ये सभी ब्राह्मण और देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इस अवस्था में, क्योंकि दक्ष तो मर चुके होते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाके शरण लेते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या हुआ, ब्रह्मा जी को ऑलरेडी पता रहता है क्या हुआ है। तो एक्चुअली इस यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो देख चुके रहते हैं कि क्या होने वाला है, दक्ष का इस यज्ञ में क्या होने वाला है, उनको पहले से पता रहता है, इसलिए दोनों लोग नहीं जाते। तो देवताओं ने जब इस प्रकार से बताया, फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक्चुअली आप यज्ञ करने से सफल नहीं हो सकते हैं, एक तरफ एक साइड तो आप यज्ञ करते हैं और दूसरी साइड आप शंकर जी जैसे महान वैष्णवों को, महान पर्सनालिटी को अपराध करते हैं, नहीं हो पाता है। और जब से आपने भगवान शिव को यज्ञ के भार से अलग किया है, यज्ञ का भार देने से अलग किया है, तब से आप लोगों ने उनके चरणों में अपराध कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप सभी को जाना चाहिए और भगवान शिव के चरणों में सरेंडर करना चाहिए अपने आप को। जब भगवान शिव के चरणों में सरेंडर करेंगे, उनके चरणों में गिरेंगे, तब वो प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि भगवान से वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें तो केवल एक बार इच्छा करके सारे ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते हैं, सारे प्लैनेट्स का विनाश कर सकते हैं। और साथ साथ आप इस दक्ष की गलती के कारण उनकी वाइफ का भी मृत्यु हुई है, तो ऑलरेडी वो दुखी हैं, और दक्ष ने उनको कितने गलत गलत शब्द बोले हैं उसके कारण भी वो दुखी हैं, इसलिए आप सभी को जाना चाहिए और शिव के पास जाके क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं देवताओं के साथ गए, देवताओं ऋषियों के साथ भगवान शिव के लोक में जाते हैं। शिव के लोक का नाम है कैलाश पर्वत, और जब वो रास्ते में रहते हैं तो वो कैलाश पर्वत के पहले एक फॉरेस्ट आता है, उस फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, ये फॉरेस्ट एक्चुअली बहुत आध्यात्मिक संसार है, वैकुंठ के जैसा प्रतीत होता है, भगवान शिव का लोक जो है वैकुंठ के जैसा मान प्रतीत होता है। इस फॉरेस्ट में जब वो जाते हैं तो सौगंधी का फॉरेस्ट के पहले अलकापुरी भी आती है, हमारी बड़ौदा वाली अलकापुरी नहीं, अलकापुरी एक्चुअली कुबेर का एक धाम है, कुबेर जहाँ पे रहते हैं उसको अलकापुरी बोला जाता है। तो वो अलकापुरी जो एरिया था बहुत सुंदर था, अलग अलग प्रकार के जंगल थे, अलग अलग प्रकार के पेड़ थे, फल थे, फूल थे, और देवता लोग वहां पे आते थे, अलग अलग नदियों में देवता और स्त्रियां स्नान करती थी, अप्सराएं, अलग अलग फूल थे, ऐसे फूल जो भौतिक संसार में कहीं पाए भी नहीं जाते हैं, मंदार, पारिजात, तमाल, ताल ट्री, अर्जुन, मैंगो, कदम्ब, चंपक, अशोक, मालती, मल्लिका, माधवी, बकुला, बहुत अलग अलग प्रकार के वहां पे सुंदर सुंदर फूल थे। और इतने कल्प वृक्ष भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से कैलाश पर्वत के एरिया में भी कल्प वृक्ष पाए जाते थे। और कैलाश में दो प्रकार की नदियां भी हैं, नंद और अलक, और सभी स्त्रियां जो देवताओं की जो पत्नियां होती हैं वो इन नदियों में स्नान करती थी। और देवताओं ने एक एक तालाब को भी देखा, अलकनंदा, जहां पे सती स्नान करते थे। और फाइनली वो उस जगह पे आए जहां पे उन्होंने एक बहुत बड़े बरगद के वृक्ष को देखा। ये बरगद का वृक्ष 100 योजन ऊंचा था, 100 योजन मतलब 800 मील ऊंचा वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे हवा एकदम शीतल हवा थी, और परंतु वहां पे कोई चिड़ियों के घोंसले नहीं थे, तो एकदम एटमोसफियर एकदम शांत था। और उस वृक्ष के नीचे देवताओं ने देखा कि भगवान शिव बैठे हुए हैं और बहुत शांति से बैठे हुए हैं। ऐसा देख के लग रहा था कि उनको कोई गुस्सा नहीं है। और भगवान शिव एक मृग मृग के आसन के ऊपर बैठे हुए थे, और बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि उनसे उनके सामने बैठे हुए थे, और भगवान शिव उनको भगवत तत्व का ज्ञान बता रहे थे। कुबेर, नारद मुनि, चार कुमार, ये सभी उनके सामने बैठे हुए थे, और भगवान शिव के शरीर शरीर के चारों तरफ राख लगी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था उनको देखने के कि भगवान जैसे सायंकाल के क्लाउड के समान लग प्रतीत हो रहे थे। शाम के समय जिस प्रकार से क्लाउड होता है, बादल होता है, उस प्रकार से भगवान प्रतीत हो रहे हैं। जब देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान शिव ने भी देखा भगवान ब्रह्मा जी सामने हैं, तो शिव तुरंत उतर के, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो शिव तुरंत अपने स्थान से उतर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी को जब देखा तो नारद और बाकी सभी ऋषि मुनि भी उनको प्रणाम करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी फिर भगवान शिव के लिए प्रार्थना करते हैं, बताते हैं कि हे भगवान शिव, मैं जानता हूं कि आप पूरे भौतिक संसार के कंट्रोलर हैं, आप इस संसार को मेंटेन करते हैं, एनिहिलेट करते हैं, और जो भी भक्त आपके चरणों में आते हैं उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु भी प्राप्त होते हैं, और आपके जैसा उनको स्वभाव प्राप्त होता है, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता है, हर व्यक्ति को समान तरीके से देखते हैं और वो शारीरिक स्तर से ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, साथ साथ ये भी प्रार्थना बताते हैं कि आप कभी भी संसार की माया शक्ति से प्रभावित नहीं है, इनफैक्ट माया शक्ति आपकी पत्नी के रूप में है, परंतु आप कभी भी, तो कृपा करके हम सभी के ऊपर कृपा करिए, आप एक्चुअली ऑथराइज के लिए, इसलिए यज्ञ का भार आप प्राप्त करिए। और चूंकि आपको यज्ञ का भार नहीं दिया गया था, इसलिए आपने सब कुछ विनाश कर दिया। यज्ञ तो पूर्ण नहीं हुआ है, आप चल के उस अपना स्वीकार करिए और यज्ञ को पूर्ण करने में मदद करिए, और दक्ष को उनका शरीर वापस मिल जाए, इस प्रकार से कुछ प्रयास करिए, और भृगु को उनकी मूंछ वापस मिल जाए, भागो को उनकी आंखें वापस मिल जाए, और पूसा को उनके, प्रकार से जो भी ब्राह्मणों आपके आपके सैनिकों ने जिन ब्राह्मणों को पनिश किया है, और उनके भी सारे शरीर की जो भी व्याधि है वो खत्म हो जाए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और इसके उत्तर में फिर भगवान शिव बताते हैं कि हे मेरे पिता, मैं ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों का जो अपराध है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, मैंने तो उनको पनिशमेंट इसलिए दिया क्योंकि वो सही रास्ते पे आ सके, क्योंकि दक्ष का सिर तो अभी बचा नहीं है, दक्ष का सिर तो अग्नि में जल चुका है, इसलिए दक्ष को एक बकरे का सिर हम मैं दूंगा, और भग की आंखों को मैं प्रदान नहीं करूंगा, भग भग को अपने यज्ञ का जो भार है वो मित्र की मित्रा नाम से देवता जो है उनकी आंखों से स्वीकार करना होगा, और पाएंगे, और भृगु को इसी बकरे, जिस बकरे का सिर दक्ष को दी, और ब्राह्मण जो कि मुझे मेरा सिर देने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको और जिनके आर्म्स टूट गए थे उनको अश्विनी कुमार के द्वारा दान किए जाएंगे, और जिनके हाथ कट गए थे उनको पूसा के हाथ से कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से भगवान शिव के अरेंजमेंट से सभी के सभी देवता संतुष्ट थे, संतुष्ट हो गए, और भगवान ने फिर भगवान भेंट किया कि आप आइए हमारे यज्ञ के स्थल पे आइए, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और सभी देवता और सभी ऋषि मुनि आते हैं जहाँ पे दक्ष का यज्ञ संपन्न हो रहा था, बकरे के सिर के साथ जोड़ा जाता है जिस बकरे को यज्ञ में ऑफर किया गया था, और जैसे ही दक्ष के सिर को, जैसे ही बकरे के सिर को दक्ष के शरीर में जोड़ा गया, दक्ष को फिर से चेतना वापस आ गई, और जब वो तुरंत अपनी चेतना वापस आके जब उठे तो उन्होंने भगवान शिव को अपने सामने देखा। प्रभुपाद जी बताते हैं ये मंत्र के द्वारा इस प्रकार से पॉसिबल है। आजकल मॉडर्न लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते, परंतु भगवान शिव की असीम शक्ति के सामने कुछ भी संभव है। भगवान शिव सभी शक्तियों के स्वामी हैं। और दक्ष ने अभी जब भगवान शिव को देखा, भगवान शिव का के हृदय में कोई गुस्सा नहीं था, और दक्ष को भी बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने भगवान शिव का इतना अपमान किया है। तो इस तरह से जब दक्ष ने भगवान को देखा तो उनको बहुत खराब लगा, और तुरंत दक्ष ने उनके क्षमा मांगी, क्योंकि दक्ष का हृदय हमेशा ईर्ष्या के द्वारा भरा हुआ था, और ईर्ष्या के द्वारा भरे होने के कारण दक्ष को जब पुनर्जीवन मिला तो उनको पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की भगवान शिव के साथ इस प्रकार से ईर्ष्या करके। और साथ साथ दक्ष को यह भी याद आया कि उनकी पुत्री, उनकी इस गलती के कारण उनकी पुत्री की मृत्यु हुई, सती की मृत्यु उनकी गलती के कारण हुई, और दक्ष की आंखों से आंसू आने लगे, उनकी वॉइस भी चोकअप हो गई। और कुछ देर तक रोने के पश्चात दक्ष ने अपने अपने मन को शांत किया। मन को शांत करके फिर दक्ष ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि हे भगवान, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, परंतु आप इतने दयालु हैं कि आपने अपनी कृपा खत्म करने की बजाय आपने मुझे दंडित किया, उस दंड करने से मुझे बहुत फेवर प्राप्त हुआ, आपका फेवर प्राप्त हुआ। मैं आपके बारे में जानता नहीं था, आपकी ग्लोरीज को भी नहीं जानता था, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत अपराध किया, और आपको भरी सभा में मैंने अपमानित किया, आपके लिए गलत गलत वर्ड बोले, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और इस अपराध के कारण मैं नरक जाने वाला था, परंतु आपने ही कृपा करके मुझे पनिश किया, मुझे दंडित किया और मुझे बचा लिया, और मुझे इस प्रकार की सही चेतना में वापस आप मुझे लेके आए। इस प्रकार से दक्ष ने प्रार्थना की। भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शिव का नाम आशुतोष है, और आशुतोष नॉर्मली जब कोई व्यक्ति उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव ने उनको माफ कर दिया, तो दक्ष ने उनसे परमिशन ली, भगवान ब्रह्मा से और भगवान शिव से परमिशन ली, और अपना यज्ञ फिर से प्रारंभ किया। सबसे पहले पूरे यज्ञ के स्थान को शुद्ध किया गया, और यज्ञ के बाद स्थान को शुद्ध करने के लिए पुरोदास नाम से ऑब्लेशंस को ऑफर किया गया, और जब यज्ञ का स्थल पूरी तरह से शुद्ध हो गया, तब दक्ष ने यजुर्वेद के मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में घी डालना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु वहां पे उपस्थित हो गए, यज्ञ की पूर्णाहुति के समय भगवान विष्णु उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु का यह रूप था, गरुड़ के ऊपर स्थित होकर भगवान विष्णु वहां पे आए थे। और भगवान जब आए वहां पे, जब भगवान विष्णु आए, तो उनके उनके सौंदर्य से, उनकी चमक से बाकी सभी की चमक एकदम फीकी पड़ गई, बाकी जितने भी खड़े थे सबकी चमक बहुत कम हो गई। और भगवान विष्णु के 8 हाथों में उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म तीर धनुष और भाला और तलवार इस प्रकार से वो लिए हुए थे। अलग अलग ऑर्नामेंट्स भगवान के शरीर में स्थित थे, भगवान का पूरा शरीर एक वृक्ष के समान महसूस हो रहा था, और पूरे शरीर भगवान ने गले में माला, फूलों की माला डाल रखी थी, भगवान के बगल में व्हाइट चामर चामर से उनको सेवा की जा रही थी। जैसे ही भगवान विष्णु वहां पे आए, सारे के सारे देवता, भगवान ब्रह्मा शिव सभी लोग भगवान विष्णु को प्रणाम किए, उनके सामने दंडवत प्रणाम करके। तो यद्यपि ब्रह्मा ने पहले भगवान शिव को सुप्रीम बोला था, परंतु अभी दोनों, ब्रह्मा और शिव, दोनों भगवान विष्णु के सामने प्रणाम करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं उनको। और फिर देवता और ऋषि मुनि भगवान के सामने खड़े होके उनको प्रार्थनाएं करते हैं बहुत सम्मान के साथ, और सभी देवता लोग माफी मांगते हैं कि उनकी क्या क्या गलती हुई जिसके कारण भगवान शिव के साथ इस प्रकार से हुआ, और साथ साथ वो भगवान विष्णु को ग्लोरीफाई करते हैं। और भगवान शिव फिर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा मन और चेतना आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा आप में फिक्स रहे, और आपके चरण कमलों को मैं हमेशा ध्यान करता रहूं, क्योंकि आपके चरण कमल ही संसार के सभी सिद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित हैं। मेरा मन इस प्रकार से लगा 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 रहता है, इसलिए कभी भी मैं ऐसे व्यक्तियों से डिस्टर्ब नहीं होता हूं जो कि ब्लास्फेम करते हैं या ऐसा बोलते हैं कि मेरे क्रियाकलाप शुद्ध नहीं है। इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया, और फिर भगवान विष्णु ने दक्ष को रिप्लाई किया कि हे दक्ष, आपको ये समझना चाहिए कि मैं सभी क्रियाओं का कारण हूं, सारे कार्य मुझसे संपन्न होते हैं, और चूंकि मैं अपनी अपना एक्सपेंशन करता हूँ, और भगवान विष्णु और शिव जो है, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मेरे एक्सपेंशन के समान है, इसलिए ये ब्रह्मा और शिव मुझसे अलग नहीं है, और सारे के सारे जीव भी मुझसे अलग नहीं है। केवल जो अज्ञान है, अज्ञानी है, वो सोचता है कि शिव मुझसे इंडिपेंडेंट है। जिस तरह से कोई शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग समझता है, जैसे कोई बोलता है कि शिव जो है बॉडी से अलग है, ये एग्जाम्पल इसमें दिया है कि अगर कोई सोचता है कि शरीर के अलग अलग अंग शरीर से अलग है तो वो मूर्ख है। इसी प्रकार से अगर कोई सोचता है कि भगवान शिव और ब्रह्मा मुझसे अलग है तो वो मूर्ख मूर्ख व्यक्ति होगा। और इतना सुनने के बाद दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की, और फिर अपना यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ को समाप्त करने के बाद फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की और भगवान शिव की फिर से पूजा की, उनको उनका यज्ञ का श्रेय प्रदान किया, और सभी को संतुष्ट करने के बाद दक्ष ने यज्ञ की कंप्लीट करके, यज्ञ के अंत में एक वो स्नान करते हैं, उसको बोला जाता है अवभृत स्नान, वो स्नान यज्ञ दक्ष दक्ष ने किया, और उस स्नान को करने के बाद महाराज दक्ष पूरी तरह से संतुष्ट हुए, और फिर से वो धर्म के रास्ते पे स्थापित हो गए। उसके बाद देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि दक्ष का पुण्य हमेशा बढ़ता रहे, और उसके बाद सारे के सारे देवता अपने अपने लोक की तरफ चले गए, और अपना शरीर त्याग करने के बाद सती का जन्म मेनका की पुत्री के रूप में हुआ, मेनका और हिमालय की पुत्री के रूप में, और फिर से पार्वती ने तपस्या की भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। और इतना बोलने के बाद मैत्रेय मुनि विदुर को बताते हैं कि हे विदुर, ये स्टोरी मैंने दक्ष यज्ञ की, जो ये स्टोरी है ये मैंने उद्धव से सुनी थी। उद्धव जो कि बृहस्पति के शिष्य हैं, उन्होंने मुझे एक बार ये दक्ष यज्ञ की स्टोरी सुनाई थी, वो मैंने आपको सुनाई है। अगर कोई व्यक्ति इस स्टोरी को श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ सुनता है तो भौतिक संसार के जितने भी प्रदूषण हैं वो उनसे मुक्त हो जाएगा, और निश्चित तौर पे वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेगा। ये इस स्टोरी का फल है। अगर कोई इसको इस स्टोरी को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है तो भौतिक संसार के कंटेमिनेशन से क्लीन होके वो भगवत धाम प्राप्त करेगा। तो इसके बाद फिर सातवां अध्याय कंप्लीट होता है ये। इसके बाद आठवें अध्याय से अगले 5 अध्यायों तक ध्रुव महाराज की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन है, और उसके पहले 8वें अध्याय के शुरू में अधर्म का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, वो हम करेंगे, और फिर ध्रुव का डिस्क्रिप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। चार कुमार जो हैं, चार कुमार ब्रह्मा जी के चार पुत्र नारद, विभु, हंस, अरुणी और यति, ये सभी ब्रह्मा के संत थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। चार कुमार और फिर नारद और बाकी जिनका नाम है हंस, अरुणी और यति, ये सभी कभी मैरिज नहीं किए और ब्रह्मा जी के पुत्र थे और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। और अधर्म का जन्म भी ब्रह्मा से हुआ था। अधर्म का विवाह हुआ मृषा के साथ। मृषा का मतलब होता है फॉल्सिटी, झूठ बोलना या झूठ व्यवहार करना। तो अधर्म और मृषा का जब जन्म हुआ, एक्चुअली अधर्म और मृषा एक दूसरे के सिस्टर थे। तो भागवत में बताते हैं इसके तात्पर्य में कि ये एक अधर्मिक कार्य है। अधर्म में ऐसा होता है, भाई बहन के बीच में सेक्सुअल रिलेशन भी पाए जाते हैं। अगर कोई समाज में इस प्रकार से पाया जाता है, दैट मीन्स वो समाज अधार्मिक समाज है, क्योंकि सिविलाइज्ड समाज में कभी भी भाई और बहन के बीच में इस प्रकार के मैरिज रिलेशनशिप नहीं पाए जाते हैं। तो अधार्मिक समाज में इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो अधर्म ने अपनी सिस्टर मृषा के साथ विवाह किया, और अधर्म और मृषा से 2 राक्षसों का जन्म हुआ। उनका नाम था दंभ और माया। दंभ का मतलब होता है ब्लफ, किसी को धोखा देना, और माया का मतलब भी चीटिंग होता है। दंभ का मतलब होता है कि प्राइड, घमंड के समान माना जाता है। और इन दोनों को एक दूसरे राक्षस ने गोद लिया, और इन दोनों दंभ और माया जो फिर से भाई बहन थे, इनसे जन्म हुआ लोभ और निकृति। लोभ मतलब ग्रीड, निकृति मतलब कनिंगनेस, और लोभ और निकृति से क्रोध और हिंसा आता है, ईर्ष्या और गुस्सा, और क्रोध और हिंसा से फिर जन्म होता है कलियुग का। दैट मीन्स कलियुग के पिता हैं, कलियुग के माता पिता हैं क्रोध और एंगर एंड एनवी। दैट मीन्स कलियुग का ये लक्षण है, लोगों के बीच में ईर्ष्या प्रदर्शित करना, और लोगों से लड़ाई कराना, क्वेवल, और गुस्सा होना। इसलिए कलयुग में लोग बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, लगातार एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और एंगर होता है और लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि कलयुग एंगर और एनवी के पुत्र हैं। तो भक्तों के बीच में ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इस प्रकार से नहीं हो कि हमारा किसी से हम ईर्ष्या करें या गुस्सा करें और लड़ाई करें, क्योंकि भक्तों के समाज में अगर ये चीजें होती हैं, दैट मीन्स हम भक्त की तरफ से कार्य नहीं कर रहे, हम कलयुग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी केस में भक्तों के बीच में लड़ाई या ईर्ष्या और गुस्सा, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कलयुग को इनवाइट करते हैं अपने संबंध के बीच में। तो इस प्रकार से एंगल और एनवी से कलयुग, कली और कली की बहन दुरुक्ति, दुरुक्ति का मतलब होता है बहुत खराब तरीके से बातचीत करना, चिल्ला के और बहुत गलत तरीके से बातचीत करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना। तो कली और दुरुक्ति के विवाह से फिर मृत्यु और भीति का जन्म होता है। मृत्यु मतलब डेथ, भीति मतलब फियर, डर। और फिर मृत्यु और फियर से के यूनियन से यातना, यातना मतलब बहुत दर्द होना, और निराया मतलब नरक, इसका जन्म होता है। इस प्रकार से अधर्म का फैमिली है। मैं एक बार जस्ट फिर से दोहराऊंगा, अधर्म का ब्रह्मा से जन्म हुआ, और अधर्म और मूसा का विवाह हुआ, उससे दंभ और माया, ब्लफिंग और चीटिंग बनते हैं, और दंभ और माया से लोभ और निकृति, ग्रीड और कनिंगनेस का जन्म होता है, और इन दोनों से क्रोध और हिंसा का जन्म होता है, एंगर और एनवी, और एंगर और एनवी से कलि और दुरुक्ति का जन्म होता है, और कलि और दुरुक्ति के कॉम्बिनेशन से मृत्यु और भीति, फियर का जन्म होता है, और इनसे फिर जन्म होता है यातना और निरय का। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं इसके आगे कि जो भी कलयुग, जो भी अधर्म के इस डायनेस्टी को पढ़ते हैं और उसको विश्वास के साथ पढ़ते हैं, वो संसार के अधर्म से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको 2 बार पढ़ा, भागवत में ऐसा लिखा है कि 3 बार अगर कोई अधर्म की फैमिली को पढ़ता है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करता है, और उसको जिंदगी में अपनाता है कि हमें किस प्रकार से अधर्म के चक्कर में नहीं आना चाहिए, वो कभी भी इविलिजन अधर्म के चक्कर में नहीं आएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन होने के बाद, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद फिर ध्रुव महाराज की कथा प्रारंभ होती है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र जो कि उत्तानपाद और प्रियव्रत है। हम जस्ट कथा को प्रारंभ करेंगे क्योंकि कथा तो बहुत लंबी है, कल कल इसको कंटिन्यू करेंगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत तो भगवान की भक्ति के लिए चले गए थे, उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया था। उत्तानपाद ने राज्य स्वीकार किया था। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। और एक बार जब उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को लेके अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, गोदी में बैठे हुए थे, तो ध्रुव ने प्रयास किया कि वो भी अपने पिता की गोदी में जाए, परंतु राजा राजा ने कुछ इस प्रकार से बोला नहीं। उसी के बीच में उनकी जो सुरुचि, जो उत्तम की माँ थी, वो आके ध्रुव महाराज को गोदी से उतारने लगी, और उससे आके बोलती है कि तुम्हारा यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और अगर तुम्हें अपने पिता के गद्दी पे बैठना है या पिता की गोदी में बैठना है, तो तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा, और भगवान विष्णु जब तुम्हारे सामने आए तो उनसे वरदान मांगना होगा कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो कितना घमंड की बात है। वो ये भी नहीं बोले कि भगवान विष्णु अगर आशीर्वाद देंगे तो बैठ सकते हो, बोले नहीं, भगवान विष्णु को भी अलाउ नहीं करेंगे, भगवान विष्णु से ये आशीर्वाद मांगो कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होना चाहिए, तभी तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठ सकते हो। इस प्रकार से उसने बहुत खराब शब्दों में ध्रुव का अपमान किया। और चूंकि ध्रुव 5 साल के क्षत्रिय बालक हैं, तो जिस प्रकार से कभी सांप को अगर हम कुचलते हैं तो सांप एकदम गुस्से में आ जाता है, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज बहुत जोर जोर से सांस लेने लगे अपनी सौतेली माँ के शब्दों को सुन के। और साथ में ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि उनके पिता कुछ तो बोलेंगे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उत्तानपाद महाराज पूरी तरह से शांत हैं, तो ध्रुव को और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता मुझे बचाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। ध्रुव ने तुरंत वो स्थान छोड़ दिया और अपनी माँ के पास रोते हुए जाते हैं। और सुनीति जब देखते हैं उनकी दासियां, महल की दासियां उनको बता देती हैं कि ध्रुव के साथ क्या 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 हुआ, और ये सोच के सुनीति बहुत दुखी होती हैं, खुद भी रोने लगती हैं, क्योंकि सुनीति की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी। सुनीति को भगवान नहीं, सुनीति को उनके पति जो थे वो इतना कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। सुनीति सेकंड क्लास वाइफ की जैसी थी। तो सुनीति बहुत दुखी हुई, उनको ये इंसल्ट बहुत कठिन लगी, परंतु तब भी सुनीति ने अपनी जो को वाइफ है सुरुचि उसके बारे में कुछ भी अपने पुत्र से नहीं बोला। केवल उन्होंने इतना बोला, ऐसा बता रहे हैं भागवत में, कि सुनीति का जो सुंदर चेहरा था वो एकदम दुखी हो गया इस दुख के कारण, और जोर जोर से सांस लेते हुए सुनीति ने कुछ समय तक सोचा। उसके बाद फाइनली उन्होंने बोला कि हे ध्रुव, आपको अपनी सौतेली माँ के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो व्यक्ति दूसरे को दंड देने का प्रयास करता है वो व्यक्ति खुद उस चीज में फंस जाता है। और वास्तविकता में सुरुचि ने जो भी बोला वो सही बोला, गलत नहीं बोला। आपके आपके पिता जो है वो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं और मुझे अपनी सेवा का भी मौका नहीं देते हैं, अब मुझे अपनी नौकरानी के जैसे समझते हैं, तो फिर उनकी पत्नी का क्या कहना। उन्होंने जो बोला वो सही बोला, और ये एक फैक्ट है कि तुम्हारा ये जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, ये दुर्भाग्य है, तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं अभागी औरत हूं। तो तुम्हारी सौतेली माँ ने जो भी बोला भले ही वो तुम्हें गलत लगे, परंतु वो वास्तविकता में एक फैक्ट है। तो अगर अभी तुम्हारी इच्छा है अपने अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की, तो तुम्हें तुरंत इस गुस्से को त्याग के जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दिया उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने आपको बोला कि भगवान विष्णु के पास जाओ, तो तुम्हारा यही कर्तव्य है कि अभी तुम भगवान विष्णु के पास जाके उनको प्रसन्न करो, क्योंकि भगवान विष्णु सभी साधुओं के रक्षक होते हैं, और जो भी उनके पास जाता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। और इस प्रकार से बोल के सुनीति शांत हो गई, और सुनीति ने बोला कि बिना कुछ डिले किए तुरंत भगवान विष्णु की सेवा में लग जाओ, क्योंकि उनकी कृपा से ही तुम्हारे जो परदादा भगवान ब्रह्मा हैं उनको अपना राज्य मिला था, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया था, भगवान विष्णु की कृपा से ही ये किया था। इसी तरह से तुम्हारे दादा जो स्वयंभू मनु हैं उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का राज्य किया भगवान विष्णु की कृपा से। इसी तरह से अगर तुम भी इस प्रकार से तुम्हारी कोई इच्छा है तो भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि भगवान विष्णु अपने अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं, इसलिए तुम्हें उनको अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए और उनकी भक्ति का प्रयास करना चाहिए। और मैं किसी और को नहीं देख सकती, भगवान विष्णु के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस संसार में कोई और तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है, तो इसलिए तुम जाओ विष्णु जी के पास, क्योंकि वो मेरे जैसी लाखों करोड़ों माताओं से भी ज्यादा दयालु हैं और संसार में सभी की मदद करने वाले हैं। इतना बोल के सुनीति रोते रोते शांत हो गई, और ध्रुव ने भी मन में विचार किया कि अभी भगवान विष्णु के अलावा और किसी को वो स्वीकार नहीं करेंगे, और इस अच्छी बुद्धि से सोच के ध्रुव ने अपना घर त्याग कर दिया और जंगल में जाते हैं। और ध्रुव की तपस्या, ध्रुव का भगवान से मिलना, फिर उनका वापस आना, और ध्रुव की यक्ष के साथ फाइट जो होती है वो सब हम कल कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ध्रुव की तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने के अंदर ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। ओके, अगर कोई प्रश्न है तो चैट में लिख सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम एंड करके कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।